اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. موت کے سلسلے کا درس نمبر 15. موضوع بظاہر بڑا تلخ اور ڈراؤنا قسم کا ہے، لیکن آپ لوگوں کی دلچسپیاں دیکھ کر جیسے جیسے آپ کی دلچسپی ہوگی، جیسے جیسے آپ لوگ تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے، جیسے جیسے آپ کی دلچسپی دیکھنے میں آئے گی ویسے ویسے بیان اور کوشش کریں گے کہ بہتر ہوتا جائے. دیکھیے، ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ بیان کا جو لطف ہے نا، یہ اصل میں سامع کے ذوق پر منحصر ہوتا ہے. جس طریقے سے علماء مثال دیتے ہیں کہ شیر مادر اسی وقت اترا کرتا ہے جب بچے کے اندر کوئی طلب پائی جائے. سامع اگر طالب معرفت ہو تو مردہ آواز کہنے والے میں بھی ایک جان پڑ جاتی ہے، اور سامع سننے والا اگر اس کی فکر بلند ہو تو متکلم بھی، بولنے والا بھی سطح عمومی سے بلند ہو جاتا ہے. اور اگر سامنے بے ذوق افراد ہوں تو نہ صرف یہ کہ زبان معرفت بند ہو جاتی ہے، اور بلکہ سکوت اور خاموشی کے جو پردے ہیں اس میں اسرار پنہا ہو جاتے ہیں، باتیں واضح نہیں ہوتی. اور بتکلف اگر پھر بھی کچھ کہا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. جبھی جو مثال دی جاتی ہے کہ اندھوں کے سامنے اظہار حسن بے معنی، اور نابینا شوہر کے لیے کوئی بیوی سنگار نہیں کرتی. یہ بہرحال ایک جملہ ہے. تو بہرحال اب کیونکہ آپ اس طور پر آ گئی ہیں، مدرسہ آپ نے جوائن کر لیا ہے، علم دین سیکھنے میں آپ نے اپنی راہ کا انتخاب کر لیا ہے، تو بعض اوقات شروع میں دیکھیے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات نیتیں کسی کی ہو سکتا ہے کہ مختلف ہوں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے کوئی بھی اپنی نیت کیوں نہ ہو علم حاصل کرنے کی، بہت سی ہو سکتا ہے صرف ذاکری سیکھنے کی وجہ سے آئی ہوں، بہت سی کسی اور وجہ سے آئی ہوں، بہت سی کسی اپنی سہیلی کے ساتھ ایسے ہی شوق شوق میں انہوں نے لے لیا ہو، کچھ کی نیت یہ ہو کہ یہ چلنا ذرا ایک گیدرنگ اور ایک وہ ہو جاتی ہے یہاں پر. لیکن بہرحال جس راہ پر اب آپ نے قدم رکھ دیا ہے، بعض اوقات اس کے اس طرح کے بھی نتیجے نکل سکتے ہیں جیسے اس آرابی نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا تھا اور جب نکالا تو اس کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے تھے. موسیٰ بظاہر محاورے میں آگ لینے گئے تھے لیکن پیغمبری ان کو مل گئی. بظاہر حضرت آدم کی لغزش سامنے آئی تھی لیکن یہی ان کی لغزش نزول علی الارض کا سبب بن گئی، اور اس کے بعد جو انہوں نے توبہ کی تو پھر ان کی ذریت سے لاکھوں انبیاء، اولیاء، آئمہ اور صالح لوگ پیدا ہوئے. اور بچے کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ شروع میں بچہ مدرسے اور مکتب جانے میں بہت زیادہ گھبراتا ہے، جس طریقے سے آپ لوگوں کی اکثریت اسائنمنٹ لکھنے سے گھبراتی، لیکن پھر ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ وہی بچہ جب اس سختیوں کے پیریڈ سے گزر جاتا ہے پھر وہی امام خمینی اور ملا صدرا اور ابو علی سینا اور آیت اللہ سیستانی وہ بن کے نکلتا ہے. تو بہرحال یہ ایک آپ کے سامنے کہ آپ لوگ اتنی دلچسپی لے رہی ہیں تو اس وجہ سے ہم اس سلسلے کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں، اور جیسے جیسے دلچسپی لیں گی ویسے ہی ہم اس کی تفصیل بھی بیان کرتے جائیں گے. تو بات ہو رہی تھی ہماری موت سے متعلق. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم ایک تمہیدی گفتگو موت کے سلسلے میں کرتے بھی ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ روزانہ میں 5 مرتبہ تمام لوگوں کے گھروں میں ضرور جاتا ہوں، بلکہ روزانہ نمازوں کے اوقات میں یہ حضرت عزرائیل آتے ہیں اور لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. حضرت اسرائیل فرماتے ہیں کہ میں ہر چھوٹے بڑے شخص سے واقف ہوں. خود پیغمبر اسلام کا اپنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اول وقت نماز پڑھے گا اسرائیل اس سے مصافحہ کرے گا اور مرتے وقت کلمے کی تلقین کرے گا اور شیطان کو دور کرے گا. کیونکہ شیطان کو ہم جیسے سے پہلے حالت احتجاج کے اعمال میں بیان کر چکے ہیں کہ شیطان اس موقع پر ضرور آتا ہے اور جو واقعی اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں وہ اس بات سے بہت گھبراتے بھی ہیں. امام خمینی کے پوتے تھے جن کا نام تھا علی آغا خان. امام خمینی آپ نے دیکھا ہوگا ایک تصویر امام خمینی کی چلتے ہوئے ایک چپل پہن کے جا رہے ہیں, ان کے بچے ایک بہت چھوٹے بچے نے ان کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. امام خمینی نے کہا ایک ہاتھ کمر پہ رکھا ہوا ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے اس بچے نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. امام خمینی بڑی شدید محبت کرتے تھے علی آغا سے. اچھا جب امام خمینی کا آخری وقت آیا تو امام خمینی نے لوگوں سے کہا اپنے اہل خانہ سے کہ میرے آخری وقت میں میرے پاس علی آغا کو مت آنے دینا, کیونکہ میں نے روایات میں یہ بات پڑھی ہے کہ شیطان اس چیز سے گمراہ کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے وقت احتجاج کہ جس سے انسان اس دنیا میں شدید محبت کرتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ علی آغا کو میرے پاس اس وقت نہ بھیجا جائے. تو دیکھا اپنے کہ بہرحال خدا کے صالح بندے موت کے سلسلے میں بڑا محتاط روی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کو ایک عام سی اور ایک سرسری سی چیز نہیں سمجھتے کہ جیسے کہ اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آتی. موت کو بلائے جانے کی بہت جو اہم وجوہات تھیں اس میں ایک دفعہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ دراز امیدیں اور طول عمل کا ذکر کیا تھا. دیکھیں یہ جو طول عمل ہے نا ہماری, یہ جو لمبے چوڑے پروگرامز ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی ساری خواہشات بھی پوری کر دی جائیں نا تو نئی لاکھوں خواہشات آپ کے سامنے پھر آ موجود ہوں گی. ہارون رشید عباسی کا ایک واقعہ بڑا مشہور تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ ہارون رشید نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص سے ملوں کہ جس نے براہ راست پیغمبر اسلام سے کوئی حدیث سنی ہو. اچھا اب ہارون رشید کی دیکھیے جو حکومت تھی نا 170 ہجری کے اندر قائم ہوئی تھی. اب اس وقت کون سے کیسے آدمی کو لے کر آئے ہیں کہ جو رسول سے براہ راست جس نے حدیث سنی ہو درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو. بہرحال ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک اتنے بوڑھے شخص کو لے کر آئے, ہڈیوں کا پنجر, اسے ٹوکری میں رکھ کے ہارون رشید کے پاس لایا گیا تھا. اس بوڑھے نے آ کر کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام سے ایک حدیث سنی ہے, میں بہت چھوٹا تھا اور اپنے والد کے ساتھ میں گیا تھا پیغمبر کے پاس. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں, ایک تو ہے حرص اور دوسری ہے طول عمل, لمبی لمبی دراز امیدیں اور بڑے بڑے پروگرام. اور بہرحال یہ اس نے حدیث پیش کی, ہارون رشید بہت خوش ہوا کہ چلو میں نے ایک حدیث سن لی اس طرح سے. اس کے بعد اس کو ایک درہم تھیلی انعام میں دی اور اس کے بعد وہ چلا گیا. لوگ اسے اٹھا کے لے گئے, رستے میں کہنے جب گیا تو کہنے لگا مجھے بادشاہ سے ایک بات پوچھنی رہ گئی ہے, ذرا جلدی سے مجھے بادشاہ کے پاس واپس لے کے چل. بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس لایا گیا تو کہنے لگا بادشاہ سلامت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انعام آپ نے ابھی مجھے دیا ہے یہ کیا ابھی کے لیے یا ہر سال مجھے یہ انعام دیا جائے گا؟ ہارون رشید بھی اسی طریقے سے بہت ہنسا اور کہا کہ واقعی پیغمبر اسلام کی حدیث کے ابھی اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ گھر تک جانے تک انتقال کر جائے, لیکن اس کو ہر سال کی ابھی بھی فکر ہے انعام لینے کی. تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی یہ چیزیں. دیکھیے لیکن علماء جو ہیں ان کی ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. باقاعدہ ایک عالم تھے جنہوں نے اپنے گھر میں اپنی قبر کھدوا رکھی تھی. دیکھیے گھر میں قبر کھدوانا وہ تو ہم نے بتایا تھا کہ خود گھر میں قبر کھدوا کے اس میں دفن ہونا وہ کراہیت رکھتا ہے, لیکن گھر میں ایک قبر کھدوا کے یاد دہانی کے لیے اس میں تو کوئی حرج نہیں. کہ جب بھی وہ اپنے دل میں کچھ قساوت اور سختی محسوس کرتے تھے تو तो उस कब्र के अंदर जाते थे और सूरह मोमिनून की 99वीं और 100वीं आयत पढ़ते थे कि ऐ परवरदिगार जो आयत है मुझे पलटा दे ताकि जो कुछ मैंने तर्क किया है इस दुनिया में उसका मैं उसको मैं बजा लाऊं और उसका मदावा कर सकूं। और बार बार गमजदा आवाज में इस आयत की तिलावत करते थे, जो मरने वाले का कौल सूरह मोमिनून की 99वीं और 100वीं आयत के अंदर, कि परवरदिगार मुझको पलटा दे इस दुनिया में वापस ताकि मैं वो सब काम कर सकूं कि जो मैंने अब तक तर्क किए। और बार बार इसकी तकरार करते और उसके बाद फिर परवरदिगार की तरफ से ही ये जुमला कहते कि हमने तुझको पलटा दिया है, अब जा और जाकर नेक अमल कर। फिर कब्र से बाहर निकलते और नेक अमल में मसरूफ हो जाते। तो देखिए बहरहाल इस तरह का एक तरीक़ेकार उलमा की सीरत ये हमारे सामने रहती, लेकिन हमने एक मौत का एक ऐसा एक बेजा खौफ अपने ऊपर तारी कर रखा है जो हमें अमल की तरफ रागिब भी नहीं करता। चलें उस तरह का मौत का खौफ तो बहुत अच्छा है कि जो जिससे हम अमल की तरफ रागिब हों, लेकिन हम उसका ख्याल आते ही दिमाग से झटक देते। देखिए अब देखिए मौत से जो लोग भी डरते हैं, किन वजूहात से इंसान मौत से आने से डरता है, मौत के आने से डरता है? देखिए बहुत से लोग इस वजह से मौत से डरते हैं कि वो मौत को एक फना और एक खात्मे की चीज समझते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मौत एक अदम का अंधेरा है। जी नहीं, ये जुमला है उलमा का कि मौत एक दरख्शां जिंदगी है, इसमें लज्जतें ही लज्जतें हैं, मुसर्रतें ही मुसर्रतें हैं और तरक्कियां ही तरक्कियां। ये जुमला है उलमा का। तो अगर इस लिहाज से भी देखा जाए कि मौत एक फना को उसको समझना, तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है। दूसरा, बहुत से लोग इस वजह से मौत से डरते हैं कि कहीं वो जहन्नम रसीदी ना हो जाए अपने अमाल की वजह से। चलें ये भी एक ये इस तरह का खौफ तो समझ भी आता है। तो इससे इस खौफ से बचने का भी नुस्खा बहुत आसान है, गुनाह छोड़ दीजिए और नेक कामों में मशगूल हो जाइए। इसमें कौन सी मुश्किल बात? देखिए तौबा इंसान करता रहे और उसके बाद रहमत खुदा की उम्मीद रखे, बस फिर उसको मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं। पैगंबर इस्लाम ये बात भी इरशाद फरमाते हैं कि जिन कामों की वजह से तुम मौत का आना नापसंद करते हो उन्हें फौरन छोड़ दो। जिन कामों की वजह से तुम्हें मौत नापसंद है ना, उन कामों को छोड़ दो। तो बहुत आसान है। तो जिन लोगों का खौफ जहन्नम में जाने की वजह से मौत से डरते हैं वो लोग, उनके लिए बहुत आसान है कि वो गुनाह छोड़ दें और नेकी की तरफ मुतवज्जे हो जाए। तीसरा ग्रोह वो है जो कि मसलन कि अभी हमारी औलाद की शादियां हो जाएं और अभी पोते और नवासियों की शादियां भी हम देख लें, चलें अगर इस वजह से भी वो मौत उनको बुरी लग रही है कि ये सब चीज़ें और खुशियां देखना चाहते हैं, तो पैगंबर इस्लाम ये बात भी इरशाद फरमाते हैं, इंशाल्लाह इस पर भी हमारी आइंदा गुफ्तगू होगी, कि रूह जो है ना मरने वाले की, वो दुनिया के हालात को बखूबी देखती है। तो ये सब चीज़ें आपको उसके बाद भी मुहैया कर दी जाएंगी। ये सब चीज़ें, इसकी इत्तलात आपको हम आगे चल के तफसीलन जिक्र करेंगे भी कि इन सब की इत्तलात आपको दी जाती हैं। बहुत से लोग इस वजह से मौत से डरते हैं कि हमारे बाद हमारी औलाद का क्या होगा, जबकि कितने दुनिया के लाखों करोड़ों लोग ऐसे गुजरे हैं कि उनकी औलादों ने अपने वालदैन के मरने के बाद उनसे कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारी। बहुत से लोग इस वजह से मौत से डरते हैं कि जनाब खुदा ना जाने हमारे साथ क्या सलूक करे, यानी उनको एक मुभम सी कैफियत होती है कि जाने हमारे साथ ना जाने क्या होगा। तो पैगंबर इस्लाम की वो हदीस दिमाग में रखें कि परवरदिगार आलम 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। और ये भी हदीस कुदसी के अंदर है कि जैसा गुमान होगा वैसे ही परवरदिगार आलम आपसे बर्ताव करेगा। अगर आपको अपने गुनाह बेशुमार लगते हैं तो उसकी रहमत भी तो बहुत ज्यादा वसी है। वो जो मीर अनीस का शेर भी है ना कि रहमत का तेरी उम्मीदवार आया हूं, मुंह ढांपे कफन से शर्मसार आया हूं, चलने न दिया बारे गुनाह ने पैदल, इस वास्ते कांधों पर सवार आया हूं। तो बहरहाल इंसान गुनाहगार कितना ही हो, रहमत खुदा की उम्मीद उसको हमेशा रखनी चाहिए। और उलमा का एक जुमला और मैं आपके सामने पेश करूं कि ये जो आप बहुत ज्यादा अखलाकियात के अंदर एक चीज सुनती हैं, तवक्कुल तवक्कुल तवक्कुल, दुनिया के जब तमाम उमूर के अंदर तवक्कुल की इतनी अहमियत है, तो ये बात याद रख लीजिए कि मौत के बाद के मराहिल के अंदर भी तवक्कुल बहुत जरूरी। मौत के बाद के मराहिल, खुद शहीद दस्ते ग़ब-ए-शिराज़ी फरमाते हैं कि जिस तरह से दुनिया कि सख्ती और खतरे में आप खुदा पर तवक्कुल करते हैं, इसी तरह मरने के बाद के तमाम मराहिल के अंदर भी खुदा पर तवक्कुल जरूरी है। वही परवरदिगार मरने के बाद के तमाम उमूर का भी हमारे मालिक है, वही कब्र और बरजख और कयामत में जो हम उठाए जाएंगे उस वक्त भी उसी के ऊपर आप तवक्कुल और भरोसा करें। वो खुदा के जिसने हमें अदम से वजूद बख्शा, वही हमारे आखरत के तमाम उमूर का भी सरपरस्त और निगरान रहेगा। जामेउल अखबार में हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी ने आके पूछा कि अबना रसूलिल्लाह इमाम से एक चीज आके पूछी गई कि मौला कैफा असबह तो अबना रसूलिल्लाह, आपने किस हाल में सुबह की। तो इमाम ने जुमला इरशाद फरमाया कि मैंने इस हाल में सुबह की है कि खुदा मुझसे फराइज और वाजिबात तलब कर रहा है, खुदा का नबी अपनी सुन्नत की पैरवी तलब कर रहा है, मेरे अहलो आयाल नानो नफका और खाना तलब कर रहे हैं, मेरा नफ्स ख्वाहिशात का तलबगार है और रकीब व अतीत दो फरिश्ते ये मुझसे अमल सालेह तलब कर रहे हैं, और मलकुल मौत मेरी रूह को तलब कर रहा है और मेरी कब्र मेरे जिस्म को तलब कर रही है। तो इंसान किस हद तक देखे कि कितने उसके तलबगार मौजूद हैं, तो क्या उसके लिए बात सजावार नहीं है कि वो अपनी दुनियावी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजारे। कुछ ही अरसा तो रह गया, इसमें खुदा जिस तरीके से चाहता है उस तरह अपनी जिंदगी को बसर करे। अच्छा, इसके अंदर एक बात और, चंद एक हम सवाल के जवाब भी इसमें देते जा रहे हैं। अक्सर लोग इस तरह के सवाल काफी पूछते हैं कि हम ख्वाब में जो मुर्दों को देखते हैं, अच्छा इससे लोग बहुत डरते हैं। बाकायदा हिलियतुल मुत्तकीन में अल्लामा मजलिसी ने छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत लिखी। छठे इमाम की खिदमत में एक अरावी आता है, कहता है कि मौला मेरा दामाद इंतकाल कर चुका है और वो मेरे ख्वाब में अक्सर आता है, मुझे डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं ख्वाब में मुर्दों को देखना। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो छठे इमाम ने उसको एक नसीहत की कि देखो सुबह शाम मौत का इंतजार करो, मौत से फरार अख्तियार ना करो, लेकिन ये बात भी याद रख लो कि मुर्दे का जिंदा से मुलाकात करना ये तूले उम्र का सबब। यानी अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी मुर्दे को देखता है तो इसकी मायने है कि वो जिंदा शख्स की उम्र तवील होगी। इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे दामाद का नाम क्या था। उसने कहा कि मौला मेरे दामाद का नाम था हुसैन। इमाम ने फरमाया कि जो ख्वाब में हुसैन नामी शख्स से मुलाकात करेगा वह जरूर इमाम हुसैन की जियारत से मुशर्रफ होगा। और फरमाया कि तुझे जरूर जियारत इमाम हुसैन नसीब होगी। अच्छा देखिए, बाज़ औक़ात ख्वाब हमें बड़े बुरे किस्म के लगते हैं, खासतौर पर जो मौत वगैरह के सिलसिले के होते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि इसकी ताबीर कितनी अच्छी होने वाली। छठे इमाम से यह वाली भी रिवायत है कि उम्मे ऐमन के पड़ोसियों ने आके पैगंबर इस्लाम से कहा कि पैगंबर इस्लाम सारी रात उम्मे ऐमन रोती रही, हम सब परेशान है कि पूरी रात हो गई उम्मे ऐमन को रोते हुए। पैगंबर इस्लाम ने उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा कि या रसूलुल्लाह मैंने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा। पैगंबर ने कहा नहीं अपना ख्वाब तो बताओ। कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, मैं क्या बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं अपने ख्वाब को बयान करूं। पैगंबर ने कहा नहीं नहीं, बातों का चीज ऐसे नहीं होती कि जैसे तुम समझ रहे हो, तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या ख्वाब देखा। उम्मे अमन ने कहा कि मैंने ख्वाब में ये देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरे घर में है। फरमाया है उम्मे अमन, खुदा तुम्हारी आंखों को सोना नसीब करे, सारी रात जागती रही थी ना उम्मे अमन। फातिमा के यहां हुसैन पैदा होने वाले हैं और तुम हुसैन की परवरिश करोगी, उन्हें तुम दूध पिलाओगी, इस तरह मेरे जिस्म का एक अज्व तुम्हारे घर में होगा। अच्छा उसके बाद जब उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा, मौला इमाम हुसैन की पैदाइश हो गई तो उम्मे ऐमन इमाम हुसैन को गोद में लिए हुए पैगंबर इस्लाम के पास तशरीफ लाई। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है और इसको उठाकर लाने वाली भी बहुत अच्छी है। ए उम्मे अमन, देख लो ये है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद। तो देखिए बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं कि जिनको हम खासतौर पर मुर्दों का आना ये हम उस लिहाज से समझते हैं, लेकिन ये अपनी ही मैं एक दफा और पहले जब ख्वाबों की गुफ्तगू हुई थी उसमें भी बयान किया था, अगर कोई ख्वाब में अपनी मौत को देखे तो इसकी भी ताबीर ये है कि उसकी जिंदगी तबील होगी। अच्छा, इस तमहीद के बाद अब हम अपनी गुफ्तगू से फिर मुत्तसिल होते हैं कि जिसमें हम सवाल मुनकिर नकीर का जिक्र कर रहे थे। सवाल मुनकिर नकीर जिस वक्त हो जाए, यानी इधर सवाल मुनकिर नकीर खत्म हुआ और कोई शख्स जवाब ना दे सके सवाल मुनकिर नकीर का, जो आमतौर पर काफिर नहीं दे सकेंगे, मुनाफिक नहीं दे सकेंगे, आइम्मा को मानने वाले ना दे सकेंगे, तो मौलाए कायनात ये जुमला इरशाद फरमाते हैं कि एक आहनी गुर्द मुनकिर नकीर उस मरने वाले के मारेंगे। ये इधर सवाल जवाब खत्म हुए, वो जवाब ना दे सका, एक आहनी गुर्द मारा जाएगा और उसकी चीखों पुकार की आवाज तमाम हैवानात सुनेंगे सिवाय जिन्नों इंस के, और वो इस आवाज से वो हैवान रंजो वहशत भी महसूस करते हैं। फिर उसके बाद साहिब कब्र से ये बात कही जाती है कि तुम इसी बुरी हालत में सो जाओ, और उसी हालत में वो फिशार भी महसूस कर रहा होता है। फिशार के जो महसूसात काफिरों के, मुनाफिकों के और अहले बैत के दुश्मनों के, उनको नाम मानने वालों के जो रिवायात में बयान हुए हैं, वो कुछ इस अंदाज के हैं कि इस तरह से फिशार होता है उनको जिस तरीके से आहनी नेजे और तलवारों से वार किया जा रहा हो, और उनका मगज उनके गोश्त से बाहर आ जाता है, उनके तमाम नाखून उखड़ जाते हैं, और सांप बिच्छू और हशरातुल अर्ज उनके जिस्म और रूह के ऊपर चिमट जाते हैं, और सुबह कयामत तक वो अपनी इस ड्यूटी को अंजाम देंगे। अच्छा, मरने वाले को इन मूजी जानवरों से बचने की और इनसे छुटकारा पाने की अगर कोई उम्मीद है तो वो रोज़े कयामत है, फकत उस रोज वो इससे निजात पाएंगे। फरूए काफी में उसकी तीसरी जिल्द के अंदर बाकायदा पूरी तफसील इस चीज की बयान की गई। खुद इमाम रजा हमारे आठवें इमाम ने वाकफियों के मुतालिक, वाकफी तो आपके इल्म में है ना कि जो इमाम रजा की इमामत के कायल नहीं है, उसके बाद सातवें इमाम के बाद उन्होंने वक्फ कर लिया था यानी रुक गए थे, कहा कि जब एक वाकफी मारा तो उसको उसके कब्र में जाकर लिटाया गया, और फिर उसके बाद मुनकिर और नकीर आए, उससे सवाल जवाब शुरू हो गए। जब उससे ये बात पूछी गई, जब यहां पर पहुंचे कि तेरा इमाम कौन है, तो मेरे नाम की बारी जिस वक्त आई तो उस पर वो खामोश हो गया वाकफी। उसके सर पर एक ऐसी जर्ब लगाई गई जिससे उसकी पूरी कब्र आग से भर गई। बिहारुल अनवार के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। तो बहरहाल मोमिनीन कराम जितने होंगे वो, उनको तो क्योंकि इन तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह से पता है, तो उस वक्त तो उन अफराद के लिए तो कोई भी मसला नहीं। अच्छा, इतना और बता दिया जाए कि सवाल मुनकिर और नकीर के वक्त मोहब्बत अहले बैत खासतौर पर बेइंतहा फायदा देने वाली चीज है। खुद पैगंबर इस्लाम की वजह हदीस बड़ी मशहूर है कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत सात मौके पर बहुत फायदा देती, सात मौके पर। नंबर एक, मलकुल मौत की आमद के वक्त। नंबर दो, सवाल मुनकिर और नकीर के वक्त। नंबर तीन, कयामत में जिस वक्त दोबारा जिंदा किया जाएगा, इसकी भी बड़ी दिलचस्प तफसील होगी इंशाल्लाह, अपने मौके पर बयान होगी उस वक्त। नामाए आमाल को जिस वक्त हाथ में दिया जाने वाला होगा, बहुत ही क्रूशियल होगा, इंतहाई धड़कते हुए दिल के साथ इंसान देख रहा होगा कि मेरे किस हाथ में नामाए आमाल दिया जाने वाला उस वक्त। पांचवी चीज, अदालत इलाही में इंसाफ के वक्त, जब उसे खड़ा किया जाएगा अदालत इलाही में, उस वक्त मेरे अहले बैत की मोहब्बत फायदा देगी। मीजान पर जिस वक्त आमाल तोले जाएंगे, उसकी भी पूरी कैफियत इंशाल्लाह जब हम हिसाब किताब के मरहले में पहुंचेंगे अपने गुफ्तगू में, उस वक्त उसका तस्करा करेंगे। मीजान पर आमाल तोले जाते वक्त, और सातवां मौका पुले सिरात पर, उस वक्त मेरे अहले बैत की मोहब्बत बहुत फायदा देने वाली चीज है। आपने कितना नाम सुना होगा मुकद्दस अर्ज बेली का, करबला अक्सर ज्यारत के लिए जाते थे और बिल्कुल एक इंतहाई आम किस्म का लिबास पहनते थे कि अक्सर जब कभी करबला ज्यारत के लिए गए भी थे तो बहुत से लोग तो इनसे अपने कपड़े तक धुलवा लेते थे कि हम जायरीन है जरा हमारे कपड़े धो देना, और वो कपड़े धो देते थे। लोग जब बाद में उन लोगों से कहते थे अरे तुमने क्या जुल्म किया, तुमको पता नहीं कि कितने बड़े आलिम है, तो कहते थे नहीं ये तो मोमिनीन है, इन्होंने बहुत मामूली सा काम कहा है, इसको करने में क्या हर्ज। अपने इंतकाल के बाद वो कुछ उलमा के ख्वाब में आए, उलमा ने देखा कि हराम इमाम अली से मुकद्दस से अरबेली बाहर आ रहे हैं। उलमा ने पूछा कि आप ये बताइए कि कौन सा अमल आपको सबसे ज्यादा काम आया, तो जुमला था मुकद्दस से अरबेली का कि मेरे तमाम नेक अमाल तो बस यूं ही से रहे सिवाय वाली नजफ अमीरुल मोमिनीन की विलायत मोहब्बत के। मुंतखब तवारीख के अंदर भी ये वाकया मौजूद है और खास तौर पर शहीद दस्तगब शिराजी ने अपने एक दोस्त का भी वाकया नकल किया। शहीद दस्तगब शिराजी के दोस्त ने उनको ये वाकया सुनाया, शहीद दस्तगब को कहते हैं कि मेरी फूफी थी तकवे और परहेजगारी के अंदर एक मिसाली खातून थी। जिस वक्त मैंने ये रिवायत पढ़ी तो उस वक्त दिमाग में ये भी आया है कि इन दिनों में भी कोई हमें ऐसी खातून नजर आ जाए कि जो जिसको कहा जाए कि तकवे और परहेजगारी के अंदर मिसाली हो, और ऐसी कोई नामुमकिन चीज भी नहीं। अच्छा, जब उनका हालत इंतजार करीब आई तो शहीद दस्तगैब के दोस्त फरमाते हैं कि हम लोग सब उनके कमरे में जमा हो गए। कमरे में जब जमा हुए तो उनकी फूफी ने कहा कि तुम लोग दरूद क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुमको पता नहीं कि कौन सी हस्तियां यहां पर आई हुई। अच्छा, उनके दोस्त कसम खा के कहते हैं कि उस वक्त उनका पूरा कमरा एक इंतहाई मुश्को अंबर की खुशबू के साथ इतनी शदीद खुशबू थी कि हम लोग हैरान थे। कसम खा के कहते हैं शहीद दस्तगैब से कि ऐसी खुशबू हमने कभी नहीं सुनी थी, सूंघी थी ऐसी। उनकी फूफी ने हालत एहतजार में कहा कि ये खुशबू पैगंबर इस्लाम और मौलाए कायनात की खुशबू है। उसके बाद अपने उन बेटे आलिम से कहा कि तुम दुआए अहद पढ़ो, उन्होंने दुआए अहद पढ़ी और उसके बाद फिर उनका इंतकाल हो गया। तो देखिए विलायत अली और मौला की जो विलायत है इस पर जितना भी हम नाज करें और शुक्र करें वह कम है। अच्छा, खाली ये आप हैरान होंगे ये बीच में, क्योंकि विलायत अली और कब्र में काम आने वाली चीजों का जो हमने तस्करा किया तो ये सिर्फ खाली हम ये सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ हम इंसानों ही के लिए ये बात है, नहीं, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं। आप हैरान होंगे कि शायद ये कायनात की हर चीज के ऊपर ये विलायत पेश की गई। कहा रिवायतों के अंदर भी है कि खास तौर पर ये जो मौला की विलायत है ये पानी तक के ऊपर पेश की गई। रिवायत में मिलता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दफा एक दरिया में कपड़े पहने पहने गुसल कर रहे, रावी था अबू सईद नाम का, कहने लगा कि आके कहने लगा मौला आप लोग अपने तमाम कपड़े खराब कर रहे हैं। यानी जाहिर है कि मौला इमाम थे, वो आम आदमियों के तरीके से लिबास उतार कर तो दरिया में नहीं नहा सकते थे। इमाम ने जुमला इरशाद फरमाया कि हमारे नजदीक कपड़े का खराब होना दीन के फासिद होने से ज्यादा बेहतर है, तुम यहां पर क्या करने आए हो। अबू सईद ने कहा कि मौला मैं यहां पर एक ऐसी बीमारी में मुबतला हूं, तबीब ने कहा है कि तुम दरिया का पानी पियो, समंदर का पानी पियो, तुम्हें मैं पानी लेने आया हूं पीने के लिए। इमाम ने फरमाया कि जिस चीज पर खुदा ने लानत की हो वो कभी शफा का जरिया नहीं बन सकती। फिर इमाम ने जुमला इरशाद फरमाया कि जिस वक्त कौम नूह के ऊपर अजाब नाजिल हो रहा था ना तो आसमानों से पानी बरसने लगा बारिश की सूरत में, जमीन को भी खुदा ने हुक्म दिया कि तुम पानी निकालो, तो जमीन के जो चश्मे जिन्होंने पानी, कुछ ने पानी बाहर निकाला और कुछ ने अपने अंदर पानी को दबा लिया और खुदा की नाफरमानी की, उस पर खुदा ने उन चीजों के ऊपर लानत की और उनका पानी शोरीदा और नमकीन कर दिया। ए अबू सईद, तुम वो पानी लेने आए हो शिफा के लिए जो दिन में तीन मर्तबा हमारी विलायत से इनकार करता। सुनो, खुदा ने हमारी विलायत पानी के ऊपर भी पेश की है, बस जिस पानी ने हमारी विलायत का इकरार कर लिया वो पानी शीरी और खुशजायका हो गया। और जिसने इनकार किया वो खारा और नमकीन हो गया। तो आपने देखा कि बहरहाल खुद पानी तक के मुताल्लिक ये बात मिलती है कि वो भी यानी जो समंदर का कड़वा पानी है दिन में तीन मरतबा आयमा की विलायत से इनकार करता। और पैगंबर ने एक जुमला ये भी इरशाद फरमाया था कि अली की मोहब्बत फकत मोमिनीन के दिल में ही जगह पाती है, लिहाजा वही मोहब्बत करेगा अली से जो मोमिन होगा और वही अली से बुग्ज रखेगा जो मुनाफिक होगा। अलबत्ता हसन और हुसैन की जो मोहब्बत है ये मोमिन काफिर मुनाफिक सबके दिल में यकसा जगह पाती है, जब भी तुम कभी इन लोगों की मजम्मत करने वाला किसी को ना पाओगे। अब वाकई आप देखेंगे हिंदू बहुत सारे ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन के लिए कैसे कैसे अशार कहे, यानी मौला के लिए तो ऐसी शायरी और इस तरह की मोहब्बत नहीं, वो तो सिर्फ मोमिनीन के दिल में जगह पाती, लेकिन इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत को तमाम दुनिया के लोगों के ऊपर तकसीम कर दिया गया है तो वो काफिर मुनाफिक तक के अंदर दिल के अंदर जगह पाती। अब थोड़ी सी क्योंकि हमने जब उसका जिक्र किया कि ये पानी और ये जो बज़ाहिर बेजान चीजें ये भी विलायत अली और आयमा की विलायत का इकरार करती हैं, तो देखिए बहुत ये ना सिर्फ कि आयमा के हक को पहचानती हैं चीजें, बल्कि ये तमाम जो बज़ाहिर बेजान चीजें हैं ये आयमा के कातिलों तक की मारिफत रखती। आपने वो वाकया सुना होगा ना मसाइब के अंदर भी कि हारिस मलऊन ने जब हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को शहीद कर दिया था और उसके बाद उसका सर काट कर इब्ने ज़ियाद की खिदमत में ले आया था उन दोनों बच्चों का, नासिकुत तवारिख में भी है मुंतखिबुत तवारिख के अंदर भी वाकया है। तो इब्ने ज़ियाद सख्त नाराज हुआ कि मैंने तुमको कत्ल करने का तो हुक्म नहीं दिया था, सिर्फ गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, तुम कत्ल करके क्यों ले आए। तो बहुत नाराज हुआ और अपने एक गुलाम जिसका नाम नादिर था जिसके मुतालिक इब्ने ज़ियाद को पता था कि ये दिल से मुहिब्बे अहले बैत, कहा कि ना सिर्फ ये कि मैं तुमको आजाद करता हूं बल्कि इस हारिस को तुम्हारे सुपुर्द करता हूं, तुम जो चाहो इसके साथ सुलूक करो। गुलाम ये कहता है कि इतनी खुशी अगर मुझे पूरी कायनात भी दे दी जाती तो इतनी खुशी ना होती जितना इस कातिल को मेरे हवाले करने पर खुशी हुई। उसने उस हारिस के हाथ पांव गर्दन से बांधे और उसी जगह लेकर आया जहां उसने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद किया था। सबसे पहले नादिर ने मुहिब्बे अहले बैत ने उस हारिस के हाथ पांव को काटा, उसकी आंखें निकाली, उसके कान काटे, उसके पेट को फाड़ा और उसके बदन के टुकड़े कर करके फुरात के अंदर डाल दी। अच्छा आप देखिए अब पानी के मारे पर वो अहले बैत के इन कातिलों को भी पहचानता था और इमाम के साथियों के कातिलों को भी पानी पहचानता था। रिवायत में कि फुरात ने उसके जिस्म के तमाम टुकड़े निकालकर बाहर फेंक दी, दूसरी मरतबा फिर डाले गए अंदर, फिर बाहर निकालकर फेंक दी, तीसरी दफा फिर डाले गए, तीन दफा ऐसे ही हुआ। जब बार बार फुरात के पानी ने निकालकर फेंका तो एक कुआं खोदा गया, कुएं के अंदर उसके जिस्म के वो टुकड़े डाले गए, उसके अंदर लकड़ी पत्थर और सारा कचरा डाल के उस कुएं को बंद किया गया, लेकिन उस कुएं की जमीन ने भी उसको कबूल नहीं किया और उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। तीन दफा ऐसे ही हुआ, यहां तक कि फिर दोबारा लोगों ने तंग आकर हारिस की लाश को जलाकर उसकी राख हवा में बखेर दी। तो ये चीजें जो बज़ाहिर बेजान है ये भी ऐसी जान रखती न सिर्फ बल्कि आइम्मा के तमाम हुकूक को भी पहचानती हैं बल्कि उनके कातिलों तक की मारिफत रखती हैं। अच्छा उसके बाद जबकि आप वो देखती हैं जो वाकयात के अंदर भी आप सुनती हैं और बिल्कुल सही रिवायात भी हैं कि मुस्लिम के इन शहजादों को जब पानी के अंदर डाला गया था उसके बाद दोबारा उनके सर एक रिवायत में है कि उसके अंदर डाले गए थे तो बाकायदा उनके सर उनके धड़ से जाकर मिल गए थे, जैसे कि आप उसके अंदर सुनती भी हैं, उनके बदन के साथ मुलहक हो गए थे और दोनों भाइयों ने अपने एक दूसरे के गले में बाहें डालनी थी और पानी में बहते हुए चले गए थे। अच्छा इन्हीं मुस्लिम बिन अकील के जो दोनों बच्चे जो शहीद हुए थे, मुस्लिम का एक बेटा और भी था जिसका नाम अब्दुल्ला था जो करबला में अमर इब्ने सबीह सैदावी के तीर से मारा गया था, वो मैदान करबला में शहीद हुआ था। इस तरह मुस्लिम का पूरा खानदान इमाम के ऊपर शहीद हो गया था। जालिमों ने देखी कि क्या ऐसा इनके साथ सलूक किया। अच्छा अब इन जालिमों के हवाले से मैं एक बात और कर दूं कि देखिए इन जालिमों को ना तो दुनिया मिली और ना आखिरत, खसरत दुनिया वाला आखिरत, जालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, यानी एक ऐसी आप देख लेना जैसे उमर साद है, शिमर है, खौली है, सनान इब्न अनस है और दीगर अशकय फकत लानत का एक टॉक डालकर इस दुनिया से गए। देखिए जब हम मौत का जिक्र कर रहे हैं तो इन अहले बैत के जो दुश्मन थे और कातिल थे इनकी भी मौत तो आपको पता चले। देखिए कुछ तो वही मैदान करबला में वासिल जहन्नम हो गए थे। खुद रिवायत में मिलता है कि 1950 तो इमाम हुसैन की तलवार से कत्ल हुए थे। हजरत अली अकबर ने 200 को वासिल जहन्नम किया था और मौत के घाट उतारा था। हजरत कासिम ने 35 को किया था। हजरत हबीब इब्ने मजाहिर ने 62 को कत्ल किया था। अच्छा, और कुछ दीगर असहाबे इमाम ने भी कत्ल किए थे। अच्छा, कुछ तो हजरत की बद्दुआ से भी वासिल जहन्नम हो गए थे, कुछ बीमारियों में हलाक हो गए थे, कुछ पर बिजली गिरी और वो उससे हलाक हुए, खासतौर पर वो कि जो दरबारी अजीज पर इमाम हुसैन के सर पर मामूर थे उनके ऊपर बिजली गिरी थी और वो हलाक हुए थे, कुछ पानी के अंदर गर्क हो गए थे समंदर में, कुछ पागल हो गए थे वाकई करबला के बाद, कुछ ने छत से अपने आप को गिराकर खुदकुशी कर ली थी, कुछ ने कुओं के अंदर छलांगे लगाकर खुदकुशी की, कुछ के चेहरे सिया हो गए, कुछ बाद में मुख्तार के हाथों वासिल जहन्नुम हुए। इस तरीके से पूरी दुनिया और आखरत की तमाम लानतों के तौक अपने गर्दन के अंदर डालकर गए। खैर, तो अभी बीच में मोहब्बत अहले बैत का जिक्र आ गया, तो उसके लिहाज से उनके कातिलों की मौत का भी हमने कुछ तस्करा किया। अब हम थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने उनका जिक्र किया कि जो सही जवाब ना दे सकेंगे, लेकिन जिन्होंने सही सही जवाब दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह तमाम मोमिनीन इसके अंदर शामिल होंगे, उनको फिर एक बशारत दी जाएगी कि जिस तरीके से दुल्हा या दुल्हन सो जाते हैं पहली रात, इस तरह से सो जाओ। ये रिवायतों में जुमला है। कुछ लोग इस रिवायत को मजाक के तौर पर यूं भी लेते हैं कि कम से कम पहली रात तो सुकून से गुजरती है, उसके बाद बकेड़े शुरू होते हैं। तो ये तुम्हारा हुजले उरूसी है, यहां पर तुम आराम और इस्तराहत के साथ रहो और दुनिया के तमाम झमेलों से तुमको यहां पर निजात मिल जाएगी। अब तुम जरा अपने सर की तरफ निगाह उठाकर देखो कि जुमला कहा जाएगा जो बिल्कुल सही सही जवाब देगा। जब वो सर की तरफ अपनी निगाह उठाकर देखेगा, पर रूह हूं व रेहान हूं व जन्नत नईम, तो वो एक रूह रेहान और जन्नत नईम का एक मुशाहिदा करेगा और एक ऐसी खुशबू होगी जो 500 या 2000 साल की मुसाफत से भी सूंघी जा सकेगी। उस वक्त वो खुशबू भी सूंघेगा। अच्छा, अब एक चीज और यहां पर, एक जो आप बहुत ज्यादा कब्र के हवाले से एक चीज सुनती हैं, इस मुतल्लिक हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, जिसका नाम है फिशार कब्र। ये क्या है? देखिए, इसकी कैफियत मुख्तलिफ हो सकता है कि आपने रिवायात में भी पढ़ी हो, लेकिन मैं उलमा का एक रिसर्च और एक तहकीक आपके सामने वो बयान करना चाह रहा हूं। फरमाते हैं उलमा कि सच्ची बात तो ये है कि हकीकतन फिशार कब्र की कैफियत मालूम नहीं। हाँ, अलबत्ता इसका एक मफहूम है फिशार का। देखिए, दफन जब मोमिन को कर दिया जाता है तो देखिए मोमिन एक इस दुनिया के अंदर एक खुली फजा में रहने का आदी होता है। अब उसे एक बंद और क्लोज एनवायरमेंट के अंदर उसको रखा जाता है, जिससे वो एक खौफ और एक वहशत महसूस करता है। तन्हाई भी उसके लिए एक वहशतनाक होती। उसकी मिसाल उलमा ने ऐसी दी, कुछ इस तरह का, इसको फिशार कहते हैं, कुछ इस तरह की कैफियत होती है जैसे किसी फांसी के मुजरिम को जब सजा होने वाली होती है और वो रात जो वो गुजारता है तो कितनी उसकी तबीयत बोझल होती है और एक रूहानी बेकरारी में वो तड़प के वो रात गुजारता है। इस तरह की कुछ कैफियत और फिशार उसकी रूह महसूस करती। इसमें कई असल में अकवाल हैं। ये उन अफराद के लिए जिनको वाकई इस तरह का फिशार होगा। मुल्ला तकी फलसफी, उन्होंने पूरा तमाम उलमा के अकवाल फिशार के सिलसिले में नकल किए हैं और उसके बाद उनका एक नतीजा भी निकाला। फरमाते हैं कि फिशार के ये मायने नहीं है कि जिस तरीके से हम आमतौर पर पढ़ते हैं कि कब्र की दीवारें इस तरीके से आपस में मिलेंगी कि एक तरफ की पसलियां दूसरी पसली के अंदर घुस जाएंगी और मैयत के जिस्म को बिल्कुल पीस कर रख देगी। नहीं, बल्कि ये जो फिशार है ये नामरगी और गैर महसूस होगा और ये उसके जिस्म और रूह बरजखी के ऊपर वाक़ होगा और उसको ये परेशान कर देगा। कुछ इसको फिशार कब्र कहा जाता है। इस जो कैफियत होगी इसमें इसकी रूह एक अलम और एक रंज महसूस करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि बाकायदा फिजिकली कब्र की दीवारें आपस के अंदर मिल रही हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कैफियत उसकी रूह पर वाकई होगी और वो जिसके अंदर वो एक अलम और एक रंज महसूस करेगी। माद अज नजर रूह जिसम, उसमें मुल्ला तकी फलसफी ने तमाम अकवाल नकल करके और एक राय दी। दूसरा कौल अल्लामा मजलिसी का भी, علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ سوال قبر اور یہ جو فشار ہوگا یہ جسم پر اصلی صورت میں واقع ہوگا. بہرحال ان تمام اقوال کو چھوڑتے ہوئے نتیجہ یہ ہے کہ فشار ہونا تو مسلم ہے، البتہ اس کی کیفیات میں اختلاف ہے. ہر مومن کے فشار میں فرق ہوگا، ان کی شدت و ضعف میں فرق ہونا بھی یقینی ہے اور اس میں کمی و زیادتی بھی یقینی ہے. ظالموں پر فشار اتنا سخت ہوگا، روایتوں میں جملہ ہے کہ ان کا مغز پگھل کر باہر آ جائے گا اور ان کے ناخن اتر جائیں گے. لیالی الاخبار کے اندر پوری اس کی تفصیل. اچھا، کچھ لوگوں کے دماغ میں فشار کے سلسلے میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں ڈوب جاتے ہیں جو دفن ہی نہیں ہوتے، ان کے اوپر فشار کس طرح سے ہوگا؟ یہی سوال ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہ مولا ان کی تو لاشوں کو جلا کے اس کے بعد راکھ ہوا میں بکھیر دی جاتی، وہ تو دفن ہی نہیں ہوئے. تو مولا نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو اس زمین کا پروردگار ہے وہی ہوا کا بھی پروردگار ہے، وہ ہوا کو یہ حکم دے گا کہ وہ اس پر فشار کرے، اور وہ فشار قبر سے زیادہ سخت ہوگا. یہ فروع کافی کی روایت ہے کہ جن کے اوپر بھی فشار کرنا ہو کون فشار کرے گا؟ تو یہ اتنا بتا دیا جائے کہ اس ڈیوٹی کو منکر و نکیر انجام دیں گے. چھٹے امام کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میت سے سوال کیا جائے گا جبکہ اس پر فشار ہو رہا ہوگا، یعنی سوال کے وقت ہی فشار ہو رہا ہوگا. اچھا، اب فشار قبر کے کچھ اسباب بھی ہم وہ ان اسباب کو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے، اور پھر ان سے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو اگر بچا لیا جائے تو یہ بھی ہمارے سامنے سمجھنے کے پرچہ آؤٹ ہوا ہوا ہے. فشار قبر کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے چغل خوری. چغل خوری فشار قبر کی ایک وجہ بیان کی گئی. نمبر دو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا فی الحال، اس پہ آپ اخلاقی بہت سارے درس سنتی بھی رہتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں گے فشار قبر کی وجوہات میں سے ایک ہے. دوسری چیز ہے جو بہت ساری روایت میں آئی ہے، اہل سنت کی روایت میں بھی اور ہماری روایات میں بھی آئی ہے، وہ ہے پیشاب سے پرہیز نہ کرنا، یعنی نجاسات کے مسائل میں لاوبالی پن کا مظاہرہ کرنا. یہ دوسری وجہ ہے فشار قبر. تیسری وجہ بیان کی گئی ہے گھر والوں سے بد اخلاقی سے پیش آنا. شوہر و بیوی کے خاص طور پر، ابھی آگے چل کے ہم وہ مشہور سعد ابن معاذ کی جو فشار والی بات ہے اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کریں گے. یہ تیسری وجہ ہے فشار قبر کی. چوتھی وجہ بیان کی گئی ہے نعمت الہی، جو پروردگار نے نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح تصرف نہ کرنا، ان نعمتوں کا صحیح استفادہ نہ کرنا، یہ بھی فشار قبر کا سبب. اور خاص طور پر شوہر و بیوی کا ایک دوسرے سے برا سلوک، یہ فشار قبر کا ایک خاص اسباب میں سے. اور دیگر روایات میں نماز کو بلا وضو یا غلط وضو سے انجام دینا. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ بھی فشار قبر کا ایک سبب. اور اس کے بعد مظلوم کی مدد نہ کرنا، یہ بھی فشار قبر کا ایک سبب. تو سامنے ہماری چیزیں ہیں کہ یہ ایسے کوئی گناہ نہیں ہے کہ لازمان ہم ان کو انجام ہی دیں اور اتنی بڑی بلا ایک اپنے سر کے اوپر لے لیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام مومنین کے اوپر فشار ہوگا؟ مومن پر فشار کی جب بات آئی تو ابو بصیر نے مولا سے پوچھا کہ مولا مومن پر فشار کہاں واقع ہوگا؟ اب دیکھیں امام کے بڑا عجیب جملہ تھا. امام نے فرمایا ہٹ جاؤ، ہرگز نہیں. مومن پر تو قبر میں فشار ہوگا ہی نہیں. وہ زمین جس پہ مومن مدفون ہوتا ہے وہ تو تمام دیگر زمینوں کے اوپر فخر و مباحت کرتی اور تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع ہو جاتی. اچھا، جبکہ ہم کچھ اور روایات کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ ہر مومن کے اوپر فشار ہوگا. خاص طور پر پیغمبر اسلام کی وہ جو روایت ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ قبر کے دبانے سے کسی نے بھی نجات نہ پائی سوائے فاطمہ بنت اسد کے. مولا ایک متقیان کی والدہ گرامی، درود بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم. تو بالفرض اگر ان روایت کو مان بھی لیں کہ ہر مومن میں فشار ضرور ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہے پھر؟ کون سا فشار ہوگا؟ فشار کے معنی زمین کا دبانا. دیکھیے اس کی وجہ علماء نے بیان کی کہ ہر مومن پر ٹھیک ہے فشار ہوگا, وجہ اس کی ہے کہ تمام لوگ اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں, زمین کی مٹی سے. ایک عرصہ دراز کی جدائی کے بعد اس زمین کے اندر گئے, تو جس طریقے سے ماں اپنے مدتوں سے بچھڑے ہوئے بچے کو بھینچتی اور دباتی ہے, اسی طریقے سے زمین بھی دبائے گی. جو آپ نے میں نے حدیث سنائی تھی جس کے کہا تھا اس کا ایک ٹکڑا میں بعد میں نقل کروں گا, فشار قبر کی گفتگو میں وہی یہی تو تھا کہ پیغمبر اسلام کی جب ایک زوجہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جب سے آپ نے منکر و نکیر کی آواز کا تذکرہ کیا ہے اور جب سے فشار قبر کا تذکرہ کیا ہے, اس قبر کے دبانے کا جب سے کوئی چیز مجھ کو نافع نہیں ہوتی, کسی پل چین نہیں آتا, تو رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ منکر و نکیر کی آواز ایسی ہوگی مومن کے لیے لذت بخش جس طرح سے تو سرما تمہاری آنکھ میں لذت بخش ہوتا, اور فشار مومن کے حق میں ایسا راحت بخش ہوگا کہ جیسے کوئی مشفق ماں سے بیٹا اپنے سر درد کی شکایت کرے اور ماں اس کے سر کو نرم نرم دبائے. یہ جملہ ہے پیغمبر اسلام کا. تو اس لحاظ سے بھی اگر تمام مومنین کے فشار کی بات آتی کہ ہر شخص کو فشار ہوگا, تو اس کے مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ایک ماں سر کو دباتی اس طریقے سے فشار. اچھا اب وہ قضیہ وہ جو آپ کے سامنے اکثر آتا ہے سعد ابن معاذ کا, کہ دیکھیے سعد کے جنازے میں میں یہ ازیوم کرتے ہوں کہ وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا, کیونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا, اس پہ ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ سعد کے جنازے میں ملائکہ جبریل و میکائیل شریک ہوئے تھے, 70,000 فرشتوں کی ٹولیاں اس کے اندر آئی تھیں اور پیغمبر اسلام نے بار بار تکبیر کہی تھی اور پیغمبر نے سعد کے جنازے پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ مبارک ہو اے سعد, خدا نے تم کو شہادت نصیب کی. پیغمبر نے مبارکباد دی تھی اور پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا تھا اے سعد تمہاری شہادت پر عرش الہی کو درستے دیکھا گیا اور قیامت کے دن اے سعد تمہاری سفارش پر قبول بنی کلب کے حیوانوں کے بالوں کے برابر جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے. سفینۃ البحار کی روایت. حضرت ابو سعید خدری تو پیغمبر کے ایک اور صحابی تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سعد کی قبر جو لوگ کھود رہے تھے ان میں میں بھی شریک تھا اور ایک عجیب مشک کی سی خوشبو اس کی قبر سے آ رہی تھی سعد کی, اور خود پیغمبر اسلام بھی حیران بظاہر حیران نظر آ رہے تھے اور جبریل سے پوچھا تھا کہ جبریل سعد کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ کیسے ملا, تو جبریل نے کہا تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ مقام ان کو ملا. سعد کے جنازے پر سعد کی ماں نے کہا تھا ہنین لکل جنہ یا سعد, اے میرے بیٹے تجھ کو جنت مبارک. پیغمبر اسلام کا وہ جملہ اس وقت مادر سعد جلدی نہ کرو, سعد کے حق میں جنت کو قطعی اور یقینی نہ سمجھو. اور اس کے بعد پھر روایت میں کہ سعد کو فشار قبر ہوا, وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ سعد اپنی زوجہ سے سخت بد اخلاقی سے پیش آتے تھے. اب آیت اللہ محسن قرطی نے باقاعدہ اس پورے واقعے کو لکھا ہے اور اس میں کئی نکات بیان کیے ہیں اس پورے واقعے کے اندر. دیکھیے فشار قبر سے بظاہر یہ واقعہ لگتا ہے ہمیں, لیکن اس میں کئی نکات ہیں. کہا کہ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی کسی کی ظاہر داری کو دیکھ کر اس کے جلدی میں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ کیجیے گا, یہ پہلا نقطہ ہے اس کے اندر, اس واقعے کے اندر. دوسری بات یہ کہ اسلامی اخلاق کی اس قدر اہمیت ہے کہ موجودگی رسول سے بھی فشار ختم نہ ہو سکا, سعد کے اوپر عذاب رسول خدا کی خود موجودگی کے باوجود ختم نہیں ہوا, یہ اتنی خطرناک چیز ہے بد اخلاقی. اور تیسرا نقطہ انہوں نے کہا کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے مختلف عبادات اور اپنے احکامات کی بجاوری کرتے ہیں, وہ کبھی بھی اس چیز پر مطمئن نہ ہو اور ہمیشہ خیال رکھیں کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ وہ تمام اعمال ان کے حق پر بیکار ہو جائیں اور وہ ان کو فائدہ نہ پہنچا سکے. پھر اس کے اندر ایک بات اور بھی تھی, کہا کہ دیکھیے بعض مائیں اتنی بلند فکری اور ایمانی مسائل کو اتنا معیار بناتی ہیں جیسے سعد کی ماں نے بنایا تھا. سعد کی ماں نے مبارکباد دی تھی نا ہماری, جس طرح معاشرے کے اندر مائیں ہوتی ہیں کہ وہ سوائے چیخو پکار کے اور ایسے کلمات زبان سے نکالتی ہیں, لیکن سعد کی ماں نے ایمانی فکر کو ایک بنیاد بنایا تھا اور مبارکباد پیش کی تھی. एक नुकता इसके अंदर यह भी। और फिर साथ की जब कब्र को पैगंबर इस्लाम इस वाक्य के अंदर बंद कर रहे थे तो बड़े अच्छे तरीके से पैगंबर ने उनकी कब्र को बंद किया था, बड़े मोकम अंदाज में। और जिस तरीके से और खुद पैगंबर फरमाते हैं कि मुझे पता है कि बहरहाल ये बदन गल सड़ जाएगा और ये कफन भी सड़ जाएगा, लेकिन बहरहाल हर काम को चाहिए कि हम मोहकम तरीके पर अंजाम दें। देखिए इस वाकये के अंदर ये जुमला पैगंबर का है कि पैगंबर ने बहुत अच्छे तरीके से साथ की कब्र को बंद किया था खुद, और ये भी कहा कि बहरहाल चाहे जिसम गल सड़ क्यों ना जाए हर काम को मोहकम तौर पर अंजाम दें। तो यहाँ पे मैं जुमला बस यहाँ पे रुक के और कहूंगा कि अब जब मदरसे आप आ गई हैं, मुख्तलिफ चीजें आपको हम प्लान दे रहे हैं इल्म दीन में आपको आगे बढ़ाने, जब आई गई हैं तो अच्छे और मोहकम अंदाज में इल्म दीन को हासिल करें, ना सिर्फ ये कि जिसमें आप कुछ ऐसी अपनी जाती मसरूफियात को लाकर और बहुत सी चीजों को पसपोश डालें, तो तालीम दीन को भी कॉन्क्रीट बुनियादों के ऊपर इसको हासिल करें। तो बहरहाल इसी तरीके से इंसान एक बड़ा आदमी बनता है, बड़ा आदमी हूं कि जब भी हम देखते हैं कि औरतें इसको निकालने बड़े सेंसिटिव हैं, जब भी आज तक कोई बड़ी औरत हमने नाम नहीं सुना। तो बहरहाल अच्छा, अब इसमें एक बात और भी है खास तौर पर कि आपस की रिश्तेदारियों में लड़ाई झगड़े और नाचातियां बाज अवकात की इतनी ज्यादा वसत इख्तियार कर लेती हैं कि आलम आखरत के ऊपर भी ये तमाम चीजें हमारी हावी हो जाती हैं। देखिए साथ के साथ क्या हुआ। अच्छा बहरहाल अगर फिर भी कोई ये चीज ये चाहे, कोई शख्स ये चाहे कि वो फिशार उसके ऊपर ना हो, ठीक है, हम ये जो कब्र का आप बहुत से लोग ये सोचेंगे कि शायद ये हमें एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है या इस तरह की कोई बात की को नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बिलफर्ज अगर जो अभी अजाब अपने फिशार का सुना भी तो भी ऐसे तरीके बताए गए, बस आप उनके ऊपर अमल कीजिए और ये वाला चीज भी बिल्कुल एग्जेम्प्ट करा लीजिए, जैसे सवाल मुनकिर नकीर आपने एग्जेम्प्ट करवाया हुआ था, हमने जो जिन चीजों का जिक्र किया था पिछले अपने दर्स में। तो फिशार से निजात किस तरह से हासिल कीजिए, मुकम्मल तौर पर फिशार कब्र हो ही नहीं दरअसल। तरीका नंबर एक, कब्र इमाम हुसैन की जियारत को जाना। अजाब कब्र और फिशार से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। परवरदिगार आलम हम सबको मौला की कब्र पे जाना बार बार नसीब करे। तो एक तो यह है कि इतनी ज्यादा इस चीज की जियारत इमाम हुसैन की इतनी ज्यादा अहमियत है कि हत्ता उल इमकान बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक दफा एक सफर में मेरे साथ एक बुजुर्ग थे सफर हज के, उनका खुद बताते हैं कि मैं इस तरीके से हज और ज्यारतें हर साल अंजाम देता हूँ, ज्यारतें खासतौर पर, कि जब भी कभी सौदा लेने निकलता हूँ, मसलन 100 रुपए का सौदा लेने जाता हूँ, 100 रुपए निकाल के ज्यारत वाले डब्बा एक मैंने बनाया उसमें डाल देता हूँ, जब भी कोई सौदा लेने निकला उतने ही पैसे मैंने उसमें भी डाल दी, पता भी नहीं चलता और आहिस्ता आहिस्ता इतनी रकम जमा हो जाती है कि मैं बड़े आराम से ज्यारतों के ऊपर चला जाता हूँ, अलग से मुझे पैसों का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। तो बहरहाल इस तरीके से लोग अब बाकायदा अगर अपना माइंड बनाएं और जरा इस सवाब और इस फायदे को अजीम को हासिल करना चाहें तो बाकायदा उनको इस तरह के इकदाम करने पड़ेंगे। तो एक तो चीज ये हो गई। तो दूसरी चीज ऐसी है जो खैर लुत्फ़े इलाही पर मबनी तौफीकात पर मुश्तमिल होती है। ये परवरदिगार से दुआ है कि ये भी हमको ये तौफीक नसीब फरमा दे कि जो रिवायत में है छठे इमाम की कि अगर कोई मोमिन जुमेरात के दिन बादे जोहर इंतकाल कर जाए और जुमे के दिन कबल जोहर इंतकाल कर जाए, खुदा उसको फिशार कब्र से मुकम्मल तौर पर महफूज कर देगा। ये मैंने कहा भी जैसे जुमला मैंने कहा कि ये तो लुत्फ इलाही पर मबनी तौफीकात से मुमकिन है, जाहिर है कि मरना हमारे अख्तियार में नहीं है, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ करना तो हमारे अख्तियार में है। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि या तो हमें जुमेरात के दिन जोहर के बाद मौत आए या जुमे के दिन जोहर से पहले पहले आ जाए, सवाल ये फिशार कब्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आयतुल्लाह खुनसारी बाकायदा उनकी तकलीद होती थी कुछ अरसे पहले तक कि फरमाते थे कि जब भी जुमा आता था और जुमे का वक्त आ जाता था तो कहते थे लो ये जुमा भी आ गया और मैं अभी तक जिंदा हूं। तो एक सर दाह भरते थे और इस तरह के जुमले कहते थे, बाकायदा उलमा की दुआएं हैं इस सिलसिले में। तीस मरने के लिए। अच्छा फिर उसके बाद पैगंबर इस्लाम का तीसरा एक और तरीका, और ये तो हर शख्स के अपने अख्तियार के अंदर कि जो पैगंबर फरमाते हैं कि जो शख्स भी अपनी बीमारी में सूरह तौहीद की तिलावत करे वो अजाब कब्र से महफूज हो जाएगा और कब्र भी उसको ना दबाएगी, कब्र भी उसको ना दबाएगी। अपनी बीमारी में सूरह तौहीद की तिलावत करना, कि पैगंबर इस्लाम की रिवायतों में से। अच्छा, सूरह तौहीद की तो आम जिंदगी में चंद सूरे और भी हैं कि जो फिशार कब्र से बिल्कुल माफी दिलवा देते हैं। उनमें मौला ने फरमाया कि जो शख्स भी जुमे को सूरह निसा की तिलावत करेगा, सवाबुल आमाल में इस रिवायत को लिखा गया है, वो फिशार कब्र से बिल्कुल महफूज हो जाएगा। एक तो अपने सूरह तौहीद का सुना, जुमे के दिन सूरह निसा। तीसरी चीज है, क्योंकि छठे इमाम ने बताई है, वो है यासीन, सूरह यासीन को सोने से पहले या गुरूब से पहले पढ़ना, फिशार कब्र से मुकम्मल तौर पर महफूज करवा देता है। सूरह यासीन को सोने से पहले या गुरूब से पहले पढ़ना। और पांचवें इमाम ने बल्कि यहां तक इरशाद फरमाया सूरह यासीन के मुतालिक कि जो एक बार भी अपनी पूरी जिंदगी में सूरह यासीन पढ़ ले, वो सकारात मौत, कब्ज रूह और वहशत कब्र, ये सब चीजों से बेइंतहा आसान हो जाएंगे। खुदा उसको आसान बना देगा जो अपनी पूरी जिंदगी में एक दफा भी सूरह यासीन पढ़ ले। लेकिन बहरहाल अगर रोज हो सके तो क्या कहना। अच्छा, जो सूरह खासतौर पर रिकमेंडेड है फिशार से बचने के लिए, उनमें एक सूरह जुखरफ भी है, सूरह अलहाक मुत्तकासुर सोने से पहले है, और छठे इमाम की एक रिवायत में जिसमें इमाम ने वाजिब व नाफिला नमाज में सूरह नून वल कलम पढ़ना भी फिशार कब्र से बचने का एक सबब करार दिया, सूरह नून वल कलम। और उसके बाद जो अगला सूरह है, जब मैं सिर्फ सूरों का एक ग्रुप पेश कर रहा हूं जो फिशार से बचाते हैं, वो है सूरह मुल्क। आम लोग जब कभी किसी कब्र के सिराने जाएं तो कहा जाता है कि मैयत के बालाए सर इस सूरह को पढ़ा जाए, सूरह मुल्क को, ये भी फिशार से बचाएगी मरने वाले को, इकबालुल आमाल के अंदर जो रिवायत। और आम जिंदगी में सूरह मुल्क को पढ़ना शबे कदर का सवाब दिलवाता है। आम जिंदगी में पैगंबर इस्लाम की रिवायत है मजमूल बयान में कि आम जिंदगी में अगर कोई शख्स सूरह मुल्क पढ़े तो उसको रोजाना शबे कदर का सवाब दिया जाएगा। अच्छा, जो फिशार कब्र से बचाने वाले आमाल थे, सूरों का एक ग्रुप पेश किया मैंने, इसके अलावा एक है खुदा का शुक्र अदा करना, जिसको हम बिल्कुल मामूली सी चीज समझते हैं। शाकिर के ऊपर फिशार कब्र नहीं होता, खुदा का जो भी शुक्र, अब वो मफहूम वसी है और उसके आप पूरे पूरे दर्ज भी सुन चुकी हैं। अच्छा, इसकी वजह ये भी उलमा ने कहा कि शाकिर के ऊपर क्यों नहीं होता, क्योंकि छठे इमाम की रिवायत के मुताबिक इमाम ने कब्र में फिशार की वजूहात में एक वजह नेमत को जाया करना भी समझते थे, सफीनतुल बिहार की जो रिवायत, कि नेमतों को जाया करना फिशार कब्र का सबब है। इसका मतलब है जो नेमत का शुक्र अदा करता है वो खुद ब खुद फिशार से महफूज हो जाएगा, जो नेमतों को जाया नहीं करता। अब एक तो कुछ तो बज़ाहिर वो वाली नेमतें जो बिल्कुल हमारे सामने है, सेहत खुदा ने हमें दी है, फरागत हमको मसलन दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी उस चीज को खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। और एक और जो छठे इमाम ने आम जिंदगी में करने वाला अमल जो बताया है, और जिसके पास इतनी इस्तेताअत और हैसियत हो वो अपने आप को इसके अंदर लगाए, छठे इमाम फरमाते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में इस्तेताअत जिसके पास भी हो जाए वो चार दफा हज कर ले, उस पर हरगिज भी फिशार नहीं होगा। शेख सदूक ने फैसाल के अंदर इस रिवायत को लिखा, पूरी जिंदगी में अगर वो चार हज कर ले। और पैगंबर इस्लाम बाकायदा फिशार से बचने के लिए दुआ तक करते थे। पैगंबर की जब वो रबीबा बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ था ना, तो पैगंबर इस्लाम उनकी कब्र के किनारे आकर खड़े हो गए। खुद रिवायत में जुमला है कि शहजादी कौनैन भी कब्र के किनारे खड़ी थी और उनके आंसू कब्र के ऊपर गिर रहे थे। اللهم صل على محمد وعلى محمد। और उस वक्त पैगंबर इस्लाम की कब्र पे खड़े होकर दुआ कर रहे थे कि मैं इस बच्ची की कमजोरी और नातवानी को जानता हूं, ऐ परवरदिगार इसको फिशार कब्र से महफूज रखना। यानी पैगंबर, हम भी पैगंबर से दुआ करवा सकते हैं कि रसूल अल्लाह और आइमा वो भी हमारे लिए दुआ कर देंगे, हम फिशार कब्र से महफूज हो जाए। और उसके अलावा फिशार से बचने की एक और जो वजह है, उसमें एक शहादत का मिलना भी है कि शहीद को भी फिशार कब्र हरगिज नहीं होगा। तो एक तो फिशार कब्र का आपने बहरहाल एक तस्करा भी सुना, मोमिन के ऊपर फिशार नहीं होगा। हो सकता है इसके एक मायने ये भी हो कि जब वो इतने नरम नरम तरीके से जमीन दबा रही है माँ की तरीके से, तो ऐसा ही है जैसे हुआ ही नहीं। और अगर हो भी तो उसका वो मफहूम हकीकतन आपने सुन लिया। और بالفرض اگر اس کے سخت مفہوم کی طرف بھی جائیں تو بھی فشار قبر کے جتنے اسباب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, فشار قبر سے جتنے بچنے کے طریقے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے گئے. خطرہ جتنا بڑا ہو اس کے لیے تھوڑی سی محنت بھی کرنا پڑتی ہے. اگر یہ چند ایک سورے پڑھ لیے جائیں, خدا کا شکر ادا کر لیا جائے اور یہ چند ایک باتیں آپ جو آپ کے سامنے اگر پوری کر لی جائیں تو کوئی اتنا بڑی ٹاسک نہیں ہے جس کو ہم نہ کر سکیں. اس کے بعد فشار کے بعد ایک اور چیز قبر کے سلسلے میں, دیکھیے ابھی تو دیکھیے صرف پہلی رات چل رہی ہے, پہلی رات کے اندر فشار بھی ہے جس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا. پہلی رات کے سلسلے میں وحشت قبر کا بھی ایک تذکرہ آتا ہے. وحشت ایک تو تنہائی سے, قبر کی تنگی سے اور تاریکی سے, یہ تین چیزیں ہیں روایت میں جو کہ نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا کہ میں قبر کی تنگی, تاریکی اور تنہائی اس سے ڈرتا ہوں. تو بہرحال یہ جو مولا کے جملے جو ہمارے لیے ہیں, تو بہرحال اگر بالفرض یہ چیزیں ہیں اگر ہوں بھی وحشت قبر, اس سے بچنے کے بھی طریقے ہیں. ایک تو خود وہی طریقہ جو کہ نماز وحشت قبر پڑھنا جو سب جن سے واقف بھی, کہ دفن کی یہ پہلی رات پڑھی جاتی ہے اور پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے کہ میت پر پہلی رات سے زیادہ شدید گھڑی کوئی آتی نہیں, تو لہٰذا صدقہ دے کر اپنے مردے کے اوپر رحم کرو. اور اگر تم میں سے کوئی صدقہ نہ دے سکے تو پھر دو رکعت نماز پڑھے. اچھا اس نماز کے دو طریقے, ویسے تو کئی طریقے ہیں, خاص طور پہ دو طریقے بیان کیے گئے ہیں. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد دو دفعہ سورہ توحید ایک طریقے کے اندر ہے, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الحاق و التکاثر, یہ ایک طریقہ ہے. اس کے بعد درود پڑھا جائے گا اور وبعث ثوابہا الی قبر فلاں ابن فلاں, پروردگار اس کا ثواب فلاں ابن فلاں کی قبر تک پہنچ جائے, یہ جملہ کہا جاتا ہے. دوسرا طریقہ جو سب سے زیادہ رائج ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے ہم فیہا خالدون تک, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھی جاتی ہے دس مرتبہ. بہتر یہ ہے علماء نے کہا کہ دونوں طریقوں سے نماز وحشت پڑھ لی جائے. اچھا ایک نماز ایک مومن کے لیے کافی, لیکن ویسے جتنے بھی مومنین پڑھنا چاہیں ایک مردے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر کئی لوگوں کا ایک ہی دن میں انتقال ہو جائے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ علماء اور مجتہدین سے سوال پوچھا گیا اور آپ لوگوں کے سب کا دماغ میں آتا ہے کہ کئی لوگوں تو کہ ہم ایک نماز پڑھ کر کئی مردوں کے نام ہدیہ کر دیں نماز وحشت قبر. تو سب علماء کا جواب یہی آیا کہ جی ہاں, رجا کی نیت سے ایسا کرنا جائز ہے, رجان کی اس ایک نماز وحشت قبر کا ثواب ان تمام مردوں تک پہنچ جائے. اچھا اب جیسے ہی آپ یہ نماز پڑھ کر ختم کریں گے, ابھی ہم مردے کی بات نہیں کر رہے, آپ کو جو فائدہ ہوگا نماز وحشت پڑھنے والے کو جو فائدہ ہوگا ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جس پر سورج کی روشنی اور کرنیں پہنچتی ہیں, ان تعداد کو اگر جمع کر لیا اس کے برابر نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں اور آپ کے 40 درجے اسی وقت بڑھا دیے جاتے ہیں. یہ تو نماز وحشت قبر کو پڑھنے والے کے لیے فائدہ ہے. اور میت کو جو فائدہ ملتا ہے تو اسی وقت 10,000 فرشتے خدا اس کی قبر کے اندر بھیج دیتا ہے اور ہر فرشتے کے پاس ثواب اور لباس ہوتا ہے اور قیامت تک اس کی قبر بے انتہا وسیع کر دی جاتی. فلاح سائل میں رضی الدین ابن طاؤس نے پورا اس بات کو لکھا ہے. اچھا اس نماز کو کب پڑھا جائے؟ پوری رات میں کسی بھی وقت اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. البتہ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ابتدائی حصے میں اس نماز کو پڑھا جائے. پیغمبر اسلام جب ایک دفعہ گزر رہے تھے قبر سے تو لوگوں نے دیکھا, ایک رات پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا مردے کو, تو لوگ قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے عائزہ و اقربہ. پیغمبر اسلام نے فرمایا اس صاحب قبر کے لیے دو رکعت نماز خوف یہ تمام چیزوں سے اس کے لیے بہتر. جس دو رکعت نماز کو تم معمولی سمجھتے ہو اس مرنے والے کے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی. باقاعدہ ملتا ہے کہ ہمارے ایک عالم گزرے ملا فتح علی سلطان آبادی, انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے, کہتے تھے کہ میرا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کبھی مجھے اطلاع ملتی تھی کسی بھی مومن دور دراز کے جس کو میں پہچانتا بھی نہیں تھا اس کے لیے نماز وحشت قبر ضرور پڑھتا تھا, تو میرے قریبی دوست نے مجھے اپنا خواب آ کر سنایا کہ ایک مرحوم اس کے خواب میں آئے تھے اور کہا کہ میں انتہائی سختی اور شدت میں مبتلا تھا لیکن ملا فتح علی سلطان آبادی کی نماز وحشت قبر نے مجھے سختی سے نجات دلا دی. باقاعدہ اچھا اب یہاں پر ویسے تو آپ بہت سارے واقعات سنتی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ایک بالکل فرسٹ ہینڈ واقعہ ہی آپ کے سامنے میں ایک پیش کر دوں. اس قسم کی مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی بات کہ جس کے اندر اور نہ اس کے اندر کوئی ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر کسی میری کرامت کا کوئی تذکرہ ہے, میں صرف ایک واقعے کے لحاظ سے کہ اس نماز کا اتنا ثواب اور فائدہ ملتا ہے کہ خود میرے ایک عزیز کا ایک انتقال ہوا تھا, بزرگ تھے کافی, तो उनके इंतकाल के बाद जाहिर है कि एक अजीज का इंतकाल हुआ, तो जब दूसरे लोगों के लिए नमाज वैशत कबर पढ़ी जाती है तो अपने किसी रिश्तेदार के लिए नमाज वैशत कबर पढ़ना और ताकीद रखता है, तो उनके लिए मैंने नमाज वैशत कबर पढ़ी। अगली रात को मैंने हाल अगर से मैं मुझे ख्वाब इतने आते नहीं और आते भी हैं तो मैं आमतौर पर भूल जाता हूँ, लेकिन ये ख्वाब अभी तक मेरे दिमाग पर नक्श है, सिर्फ इस वजह से कि आमतौर पर आप बहुत सारे वाकयात सुनती हैं फिर आप सोचती हैं कि बस ठीक है सुसम के वाकयात, लेकिन ये बिल्कुल बरहरास नहीं आपको सुना रहा हूँ जिसने देखा है। और इससे इस नमाज का सवाब और फायदा बताने के लिए कि वो मरहूम मेरे ख्वाब में आए और इंतहा से ज्यादा खुश थे, बार बार वो मुझे गले लगा रहे थे, पेशानी को चूम रहे थे कि तुम्हारी नमाज वैशद कबर ने मुझ पर से तमाम अजाबों को बरतरफ कर दिए। बाकायदा यानी मैं इस वजह से मैं आपको ये सुनाया कि ये जो नमाज खुद है ये इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है, कोई भी शख्स इसको पढ़े ये इस तरह से मुर्दे को फायदा पहुंचाने वाली चीज है। तो एक तो कब्र की वहशत से खुद ये नमाज वहशत कब्र फायदा पहुंचाती, तो आप दो एक वाकयात से भी आपको अंदाजा हो कि सिर्फ आपके सिर्फ चंद मिनट की जहमत से अगर किसी मरने वाले को इतना ज्यादा फायदा पहुंच जाए, और खुद आप ये सोचेंगे जब हमारा इंतकाल होगा कोई हमारे लिए पढ़ना, हम कितने ज्यादा उस नमाज के मोहताज होंगे जिसका इतना ज्यादा सवाब है। और खुद जी हाँ किसी भी जगह पूरी दुनिया में, बल्कि आप रोजाना कोई ना कोई तो मोमिन मरता होगा, वैसे भी अगर आप जितने मोमिनीन रोजाना इंतकाल कर रहे हैं उन सबके लिए एक नमाज वहशत भी रिजा की नियत से सबके लिए पढ़ दी जाए तो सबको सवाब दिलवाएगी, और आपको भी वही सवाब मिलेगा रोजाना पढ़ने का कि सूरज जितनी जब चमकता है तो कायनात की जितनी चीजों पर भी उसकी रोशनी पहुंचती है उसकी तादाद के बराबर आपके नामा अमाल में नेकी आ जाएगी। जी दोबारा रिजा की नियत से दोबारा भी पढ़ सकते हैं, अलबत्ता खैर ये पहली रात से मखसूस है। अच्छा अब एक तरीका और भी है वहशत कब्र से बचने का, जो हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने बताया, कि इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी नमाज के रुकू को मुकम्मल तौर पर अंजाम दे उसको वहशत कब्र होगी ही नहीं। तो रुकू के अंदर आपने शायद किताबचा हमारा पढ़ा हो उसत उम्र रिस्क को बढ़ाने के तरीके, उम्र को बढ़ाने के तरीके के लिहाज से जो आपने शायद देखा हो उसके अंदर भी ये चीज है कि रिस्क को वसत देने के लिए भी रुकू देर तक अंजाम देना मुकम्मल तौर पर मुस्ताहबात के साथ, ऐसा ना हो कि बस विद इन सेकेंड्स हम रुकू करें और उठ जाएं, ठीक है जायज तो है अपनी जगह, लेकिन अगर कोई मजीद फायदा और सवाब चाहता है तो मुकम्मल कामिल तौर पर रुकू को अंजाम देना, इससे वहशत कब्र नहीं होगी पांचवें इमाम फरमाते हैं। तो आज की हद तक अगर चाहे इसकी में एक चीज और भी थी, एक तंगी कब्र का भी तस्करा आना था, लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर एक सख्त गर्मी और एक उससे मैं काफी फिशार महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर बैठा हुआ, तो आज की हद तक मैं गुफ्तगू वहीं पर रोकता हूँ। जी हाँ आप जितना चाहें आप रुकू के अंदर जिक्र रुकू जितना भी चाहें 5 दफा 10 दफा 50 दफा 100 दफा जिक्र रुकू आप कर सकते हैं। जी गिनना भी जरूरी नहीं, जितनी दफा चाहे पढ़े इसमें कोई हरज नहीं, नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि और ज्यादा सवाब मिलेगा। जी खास तौर पर कि जो मैदान में जंग के अंदर शहीद होने वाले हैं उनका तस्करा, लेकिन खुदा अपने फजल से दीगर शोहदा को भी ये मुकाम देते तो कोई हरज नहीं। तो आज की हफ्ते गुफ्तगू इख्तिताम पज़ीर हुई, सवाल भी काफी आ गए, इंशाल्लाह मैं तहरीर तौर पर इनके जवाब दे दूंगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الجنة يا مولانا الجنة يا صاحب السماء الجنة.